भोले बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
राधा रमणी हरि बोल
नवि
नागर किशोर न बने रसिया,
नागर किशोर न बने रसिया,
प्यारो ब्रज को झेल कन्हा मन बसिया,
प्यारो ब्रज को झेल कन्हा मन बसिया।
हरे कालिंदी, हरे कालिंदी फूल खिलो, जय राधा रमण हरि ओ, जय राधा
हरि ओ, जय राधा रमण
हरि ओ, हरि बोल
हरि
बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संतों के चरणों में वंदन। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के 57वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष में श्रीमद् भगवत कथा का द्वितीय प्रथम दिवस पूज्य स्वामी श्री आनंद चैतन्य जी सरस्वती जी महाराज द्वारा साढ़े जो कथा का गान होने जा रहा है वह हम 10 बजे तक यह कथा चलेगी। थोड़ा परिचय परम पूज्य स्वामी श्री आनंद सरस्वती चैतन्य सरस्वती जी का देना जरूरी है। आप श्री आनंद कृष्णधाम हरिद्वार से पधारते हैं, उनके द्वारा कई सुंदर पुस्तकें लिखी गई है, बहुत ही सुंदर वहां आनंद कृष्णधाम है जहां कहीं मूर्तियां का दर्शन भी है और बड़ा शांत स्थान है, सुरम्य स्थान है। उन्हीं के एक शिष्य ने लिखी हुई थोड़ी बातें पूज्य महाराज जी के बारे में लिखी है। किसी भी संस्कृति स्थान तथा व्यक्ति का जब तक पूर्ण परिचय न हो तब तक उनके प्रति कोई भाव बनता नहीं। महाराज जी का आकर्षण सारगर्भित सुमधुर यथार्थ एवं शास्त्र सम्मत प्रवचनों के द्वारा हमें हुआ। उनके श्रीमुख से निस्रुत प्रवचनों की शीतल धारा अज्ञान से आच्छादित हृदय को पवित्र करने के लिए आत्मदर्शन की ओर हमें प्रेरित करती है। ऐसी पुण्यवाणी पूज्य महाराज जी द्वारा हमें प्राप्त होगी जो 7 तारीख तक हमें प्रातः 7:30 से 10, सायं 5 से 7:30 के दरमियान होगी और कई इसमें चरित्रों के गान भी होंगे। मैं हमारे जो अभी दीप प्राकट्य हुआ जिनके वरदहस्त से वह हमारे स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष है और जो संन्यास आश्रम विले पार्ला है और कई और जगह उनके आश्रम वगैरह का सुंदर कार्य दुनिया विश्व भर में चल रहा है। अमेरिका में भी प्रेमपुरी के द्वारा साल में एक दफे पूज्य महाराज जी द्वारा बहुत ही सुंदर वहां भी कार्यक्रम होता है। ऐसे पूजनीय व्यक्ति के द्वारा आज का दीप प्राकट्य हमें प्राप्त हुआ, ऐसे स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज के प्रथम हम आशीर्वाद लेंगे। तत्पश्चात व्यासपीठ से पूज्य महाराज जी जो भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है उनका शुभारंभ करेंगे। आप सबकी तरफ से संतों को वंदन करते हैं। यहां जो भजन में कुमार बैठे हैं उनको, ब्राह्मणों को, सभी को, खुदेव को, सभी को वंदन करते हुए महाराज जी से प्रार्थना है कि आपकी आशीर्वचन।
ओम भद्रन्नो अपिवातय मनः, ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज पवित्र स्थान प्रेमपुरी आश्रम में, जिनके नाम से ये प्रेमपुरी आश्रम का निर्माण हुआ, ऐसे परम श्रद्धे महाराज श्री जी के 57वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ हो रहा है। इस कथा के प्रवक्ता परम श्रद्धे महामंडलेश्वर स्वामी आनंद चैतन्य सरस्वती जी महाराज, जो आनंद कृष्ण धाम कनखल हरिद्वार में हैं, अनेक विषयों में आचार्य किए हुए, किसी में उन्होंने स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया, ऐसे हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी महाराज, उनके साथ में आए हुए संगीतज्ञ, इस कथा में आचार्य पद को विभूषित करने वाले हमारे विश्वनाथ शास्त्री जी, अन्य सभी भूदेवगण, इस आश्रम के ट्रस्टीगण, और इस कथा के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी पोथी रखी है, परंपरा से यजमान है, ऐसे सभी श्रोतागण, पिबत भागवतम रसमालयम, रस अनेक रस, जिनके रस जितने रस कहे जाते हैं उनका सबका आलय, उसका स्थान ऐसा श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत रहस्यमय ग्रंथ है, सहजता से सहज भी और गहनता से गहन भी, ऐसा श्रीमद् भागवत। केवल हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का चरित्र श्रवण करते हैं, उनकी लीलाओं को श्रवण करते हैं, परंतु उस परमात्मा को जानने का यत्न नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिस परमात्मा की समस्त लीलाओं को, उत्पत्ति स्थिति और लय, तीनों का है जो कारण, जो साक्षात परब्रह्म है। आपने यहां पर कहा जाता है कि एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमात्मा है, उसको भिन्न भिन्न नामों से विद्वान लोग बोलते हैं, उसका अद्भुत निरूपण श्रीमद् भागवत में किया है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, ऐसा कहा गया है कि विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। तो यहां कोई परीक्षा देने नहीं आता है, परंतु यहां पर आनंद देने के लिए आपको श्रीमद् भागवत का रहस्य बतलाने के लिए अनेक विधि, कोई बात नहीं, वो भी संगीत है, आजकल मोबाइल में भी संगीत बजता है तो खराब नहीं लगता है, फिर भी न हो तो ज्यादा अच्छा, संगीत वाले इतने दूर से आए हैं वो क्या करेंगे। तो श्रीमद् भागवत एक महान ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को जानते हैं, और जीवन किसने दिया है, कैसा दिया है, जीवन में क्या करना चाहिए, इस श्रीमद् भागवत अगर हम यथोचित रूप से उसको हम ग्रहण करेंगे, उसको हम रसस्वादन करेंगे, तो जीवन में कोई क्लेश बाकी नहीं रहेगा। हमारे जीवन में कभी कभी देखने में आता है कि ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, किसी के प्रति राग होता है, अनुराग होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। श्रीमद् भागवत श्रवण करने के बाद में उसको हम कभी कभी उससे दूर रह सकते हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवत जो भगवान की लीलाओं से परिपूर्ण है, और आज के संदर्भ में इतना बोल सकते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है, हम लोग भगवान की लीलाओं का ही गान, उन्हीं का श्रवण करना चाहते हैं, तो पहले स्कंद से लेकर के नवम स्कंद तक वो भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है। भगवान श्री कृष्ण वास्तविक है क्या, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान क्या है, सद चित और आनंद स्वरूप है। जन्माद्यस्यतः, जो परमात्मा उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है, वो परमात्मा साकार रूप धारण करके जब आता है उसको हम लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो जो नौ स्कंद है भगवान के प्रागट्य की भूमिका है, और उस भूमिका के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसी हुई, मनुष्य का जन्म कब से हुआ, मनुष्य इस धरती पर कब से आया, ये सब बातें श्रीमद्भागवत में हैं। इसका बहुत विस्तार पूर्वक अपने यहां पर इसका विस्तार होता है, दोनों समय कथा होती है। और मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि अभी तक वक्ता कौन होना चाहिए, ट्रस्टियों ने मेरे पर उसकी जवाबदारी ली हुई है, तो मैं ऐसे वक्ता को ही यहां पर लाना चाहूंगा जो रहस्य को जानता हूं। हमारे स्वामी जी अगर आप लोग सुनेंगे, जो सुनना चाहोगे, अगर आप रहस्यपूर्ण सुनना चाहोगे तो रहस्यपूर्ण बताएंगे, अगर आपको लगेगा कि कहीं बीच बीच में नींद आ रही है तो आपको इतना हंसाएंगे कि आप हंसते हंसते फिर कथा भूल जाओगे, ये मुझे पता है। और उस लीलाओं को आपको किस रूप से, ये मैं कह सकता हूं क्योंकि हम पड़ोस में हैं, वहां हरिद्वार में हमारे आश्रम के सामने स्वामी जी का आश्रम है और हमारे गुरु जी ने ही महाराज जी को संन्यास की दीक्षा दी है। यदि उनके गुरु जी दूसरे हैं परंतु आचार्य गुरु होते हैं, हमारे गुरु जी और उनकी आचार्य गुरु जी एक ही हैं। ऐसे हमारे स्वामी जी आपको इस श्रीमद् भागवत का रहस्यपूर्ण और हमारी परंपरा से, क्योंकि यहां पर परंपरा चली आ रही है, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः तयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमारी इस आश्रम की परंपरा है, प्रतिवर्ष हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से परम श्रद्धे ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के निर्वाण महोत्सव को यहां पर मनाते हैं। जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं महापुरुष तो आनंद का उत्सव होता है, उस आनंद के उत्सव के लिए कि श्रीमद् भागवत से बढ़कर के कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जिसमें अनेक लीलाओं के द्वारा हम पहले श्रवण करते हैं और साथ साथ में, चलो जब महापुरुष का पदार्पण हो जाए समझना चाहिए कि कथा बिल्कुल सफल। अभी अभी आपके मध्य में हमारे जिस पीठ के ब्रह्मलीन महाराज प्रेमपुरी जी महाराज जिस पीठ से संबंधित थे, ऐसे ब्रह्म विद्या कैलाश आश्रम और वहां के वर्तमान के परमाध्यक्ष परमाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज अभी पधारे हैं, तो जब कथा का प्रारंभ हो, जैसे आप लोग अभी श्रवण करेंगे, राजा परीक्षित कथा के लिए बैठे थे और वहां अनेक संत थे, वहीं पर जैसे सुखदेव जी महाराज पधारते हैं तो स्वामी जी भी यहां पर पधारे हैं, लेकिन स्वामी जी और वहां उस प्रसंग में थोड़ा सा अंतर होगा, वो कथा करने आए थे, महाराज जी केवल इस समय यहां पर दर्शन देने के लिए आए हैं। तो बहुत ही सुंदर ये प्रसंग हमारे ट्रस्ट की ओर से यहां पर प्रारंभ हो रहा है और प्रतिवर्ष होता है महाराज जी का यहां पर आगमन। और इस ट्रस्ट की विशेषता ये है, एक तो संतों के निमित्त में स्थापित हुआ है और यहां के जो ट्रस्टी हैं वो संतों का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, तो संतों के आशीर्वाद से संतों के मार्गदर्शन में हमारे यहां के सब ट्रस्टी इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं। पहले केवल यहां पर प्रवचन होता था, स्वामी गणेशानंद जी महाराज त्यागमूर्ति जी के आदेश से उनके प्रयास से स्वाध्याय प्रारंभ हुआ और स्वाध्याय में लोगों को इतना आनंद आता है क्योंकि रहस्य जानने को मिलता है। ऐसा ही हमारा आश्रम परंपराओं से और आधुनिकता से भी बंधा हुआ उसे संचालित ऐसे प्रेमपुरी आश्रम में आज यहां पर कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो महाराज जी भी बीच बीच में पधारते, महाराज जी पूर्ण होती तक तो महाराज जी पुनः पधारेंगे और फिर एक मास तक महाराज जी यहां पर आप लोगों को प्रवचन और स्वाध्याय के द्वारा आपको खूब खूब आह्लादित करेंगे। तो मैं अधिक समय न लेता हुआ, मैं आज समय तो जैसे गिरीश भाई ने कहा था वो तो समय तो निकल गया, फिर भी मंगलाचरण करके आज हम 10:30 तक तो वो सामने घड़ी है, तो बड़ी अच्छी बात है कि आज शुभारंभ हो रहा है। प्रातःकाल शोभा यात्रा आई, विधिवत पूजन हुए और अब इस कथा का शुभारंभ हो रहा है। सायंकाल आप लोग संपूर्ण महात्म्य श्रवण करेंगे और इसके उपरांत कथा आगे चलती रहेगी। तो मैं इतना ही निवेदन करते हुए आज ये कथा निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हमारे परम सद्धे ब्रह्मलीन महाराज जी से प्रार्थना करते हैं और हम लोग उसका खूब आनंद ले और साथ साथ में जीवन में उसका हमें क्या उपयोगिता है उतना हम ग्रहण करने की परमात्मा शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्ये दुःख भाग् भवेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम् सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। बोलकृष्णकनैयालाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जगन नियंताधार अखंड ब्रह्मांड नायक नंद नंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर के पावन पुनीत पादारविंद में सत वंदन। परम आदरणीय परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषित लीलालीन ब्रह्मलीन हम सभी के आराध्य निरंजन पीठाधीश्वर श्रद्धे स्वामी प्रेमप्री जी महाराज के पावन पुनीत पादारविंद में सत सत वंदन। परम आदरणीय परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषित महानिर्माणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर शतगिरी बंगला पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित महामहिम महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरिजी महाराज के पावन चरणों में सादर हार्दिक ओम नमो नारायणाय। महाराज श्री के ही प्रेम और सौहार्द का ये परिणाम है जो हम आज आपके समक्ष कुछ कहने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। परम आदरणीय परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषित कैलाश पीठाधीश्वर श्रद्धे पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज तथा समस्त संत वृंद प्रेमपुरी आश्रम के हमारे समस्त ट्रस्टीगण कुशल कर्मठ कमेटी के समस्त पदाधिकारी तथा आश्रम में अपने अपने दायित्वों को निर्वहन करने वाले हमारे समस्त कार्यकर्तागण परम स्नेह के पात्र यजमान के रूप में हमारे परम स्नेही भक्त जी श्रद्धावी मंगलवी माताओं भद्र पुरुषो तथा हमारे समस्त विप्रवृंद आदरणीय आचार्य जी पूज्य श्रद्धे महाराज श्री की आप लोगों ने वाणी उद्घाषण भाषण के रूप में आपने सुनी। महाराज श्री ने आपको स्थाली प्रलन्यायन बहुत कुछ दिग्दर्शन कराया, बहुत कुछ बताया। हम केवल संस्पर्श मात्र करेंगे समय को देखते हुए। हमारे समक्ष श्रीमद् भागवत उपस्थित है। हम आप सभी लोग इस श्रीमद् भागवत में अवगाहन करने जा रहे हैं, इसका श्रवण करने जा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है। हमारे सामने जितने भी हमारा वैदिक वाङ्मय साहित्य है, सदग्रंथ हैं, सद साहित्य है, स्मृतियां हैं, पुराण हैं, ये सभी सहेतुक हैं। बिना हेतु किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। हरेक के प्रत्येक के पीछे कोई न कोई हेतु होता है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रति हेतु अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन की जिज्ञासा यदि न हुई होती निश्चित है भगवत गीता का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता। इसी प्रकार से जनक जी के प्रति क्या सत्य है क्या असत्य है यदि ऐसी जिज्ञासा की उत्पत्ति न हुई होती तो अष्टावक्र गीता नहीं बना होता। भगवान श्री राम के प्रति यदि जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई होती तो निश्चित है योग वशिष्ठ भी नहीं बना होता। उमा जी के अंदर यदि जिज्ञासा उत्पन्न न हुई होती तो निश्चित है मानस का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता। इसी प्रकार से समस्त अपने दायित्वों को कर्तव्यों को स्त्री पुत्र परिवार आदि समस्त ग्रंथियों का छेदन करते हुए श्री परीक्षित जी महाराज भगवती जाह्नवी गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पहुंच करके जिस प्रकार से गंगा का निर्मल जल है जहां पर एक अलौकिक विलक्षण शांति की अनुभूति होती है ठीक उस स्थल पर पहुंच करके राजा परीक्षित के अंदर एक बहुत बड़ी उत्कट जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उस जिज्ञासा का उस उत्कंठा का उस निष्ठा का परिणाम श्रीमद् भागवत है। निश्चित समझिए यदि परीक्षित जी के अंदर ऐसी जिज्ञासा जागृत न हुई होती तो शायद है कि वो भागवत हम इस रूप में नहीं सुन पाते जिस रूप में आजकल हम सुनते हैं। इस सप्ताह के रूप में प्रथम शुभारंभ परीक्षित जी के माध्यम से ही होता है तो उनकी एक जिज्ञासा का स्वरूप है हमारे सामने। तो समस्त ग्रंथ वास्तव में जिज्ञासा का स्वरूप है। जिज्ञासा क्या है? ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा। हमारे यहां ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिस प्रकार से जिज्ञासा अर्जुन के अंदर उठी, राम के अंदर जागृत हुई, अनेका अनेक योगी इति अमलात्मा महात्माओं के अंदर उत्पन्न हुई, उसी प्रकार से ब्रह्म सूत्र में उस जिज्ञासा का प्रतिपादन किया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ज्ञातुम इच्छा। और ऐसी जिज्ञासा जिस प्रकार से परीक्षित के अंदर उद्बुद्ध हुई, जागृत हुई, उत्कृष्ट जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा। जब प्रबल जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो निश्चित है वह जिज्ञासु, वह साधक उस तत्व तक पहुंच जाता है। तो उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए जिज्ञासा ही जरूरी है। जितनी हमारी उत्कृष्ट जिज्ञासा होगी, निष्ठा होगी, भावना होगी, वह भावना और जिज्ञासा हमें उत्तरोत्तर उस तरफ अग्रसर करते हुए अपने परम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परम आवश्यक है हमारी उस जिज्ञासा की उत्पत्ति होना। तो जिज्ञासा जरूरी है, जिज्ञासा आवश्यक है। तो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले जिज्ञासा की बात आती है। यदि परीक्षित के अंदर जिज्ञासा पैदा न हुई होती तो निश्चित है वो गंगा तक तट पर नहीं जाते, और गंगा तट पे नहीं पहुंचते तो योगिन मुनि अमरात्मा महात्मा ऋषिगण भी नहीं आते, और ऋषिगण नहीं आते, परीक्षित जी नहीं पहुंचते तो शायद वहां सुखदेव जी भी नहीं आते। तो ये भागवत सप्ताह का जो स्वरूप बना है तो परीक्षित की जिज्ञासा का परिणाम है। हम समझते हैं कि यहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये भी एक जिज्ञासा का परिणाम है। हम लोगों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, एक भावना उत्पन्न हुई है, तो हमारी जिज्ञासा भी इसी रूप में है। तो हमारे अंदर मात्र जिज्ञासा की उत्पत्ति हो जाए, जब भुभुक्षा होती है, जब पिपासा होती है, तो निश्चित है जितनी उत्कट हमको पिपासा होगी उस पिपासा को शांत करने के लिए हम निश्चित है जल का अन्वेषण करेंगे, जल की खोज करेंगे। पिपासा ही हमको उस जल तक पहुंचाती है। भुभुक्षा भूख है, वो हमको अन्न तक पहुंचाती है। तो भोजन के लिए भोजन की इच्छा आवश्यक है, जल पीने के लिए पिपासा की आवश्यकता है। तो जितनी प्रबल पिपासा होगी, जितनी प्रबल भुभुक्षा होगी, जितनी प्रबल जिज्ञासा होगी, उतनी मात्रा में उतनी ही जल्दी उस तत्व तक हम पहुंच सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत एक जिज्ञासा का स्वरूप है। तो हमको उत्कट जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। इस जिज्ञासा में, इस निष्ठा में, इस आस्था में कहीं गड़बड़ी होती है तो निश्चित है हमारे सामने कई तमाम समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। भगवान शंकर और सती दोनों चलते हैं कुंभज की कथा सुनने के लिए। महर्षि कुंभज के पास पहुंचते हैं, शंकर के अंदर उत्कट भावना है, बहुत बड़ी निष्ठा है, हम अपने इष्ट देव की कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए चलते हैं, साथ में सती को भी ले लेते हैं। सती भी चल रही हैं और शंकर भी चल रहे हैं कथा श्रवण के लिए। कथा श्रवण होतु दोनों चलते हैं, कुंभज के पास पहुंचते हैं। निष्ठा में अंतर है, जिज्ञासा में अंतर है, भावना में अंतर है। उसका परिणाम क्या निकलता है? दक्ष के अंदर, दक्ष की पुत्री के अंदर कुछ अधिक दक्षता है, कुछ अधिक चालाकी है, कुछ अधिक चुस्ती है। देखिए, बहुत चुस्त चालाक बनना ठीक नहीं है, होना अलग बात है और बनना अलग बात है। सती के अंदर कुछ अधिक चुस्ती है, अधिक दक्षता है, क्योंकि दक्ष की पुत्री है। हमारे एक कहावत है कि जो बहुत चतुर आदमी होता है या चतुर बनता है वो तीन जगह से गंध मारता है। साधारण आदमी रास्ते में चल रहा है, जा रहा है, उसका पैर कहीं किसी वस्तु में, गंदी वस्तु में लग गया तो सामान्य आदमी पैर को ऐसे ही जमीन पे रगड़ करके चल देगा, कुछ होगा। लेकिन बहुत बुद्धिमान होता वो सोचता ये क्या है, क्या है, अब उसकी जानकारी है कि वो हाथ से पहले पैर को टच करेगा, स्पर्श किएगा करेगा, तो उसका पहले हाथ पैर गंदा हुआ, अब उसका हाथ भी गंदा हो गया। अपनी चुस्ती चालाकी में पैर गंदा किया वो तो हो ही गया, अब थोड़ी देर में उसने हाथ भी गंदा कर लिया। अभी उसको संतोष नहीं कि है तो है क्या, अभी भी यूं कर रहा है, देख रहा है क्या है। अंत में वो उस हाथ को यूं लगाता है नाक, अरे गंदा। तो परिणाम क्या निकला, पैर भी गंदा हुआ, हाथ भी गंदा हुआ और नाक भी तरकारी, तो काम खराब है। तो बहुत जो चुस्त होता है, बहुत चालाक बनता है, अपने को होशियार समझता है, हमारे यहां होशियार शब्द का अर्थ भी कुछ और ही किया है, थोड़ा विच्छेद कीजिए, होशियार तो बहुत होशियार नहीं बनना, होशियार तो बहुत होशियार नहीं बनना, भागवत को सहज सी, कुछ क्षति जी कुछ ज्यादा समझदार बन रही है। भगवान तो सहज स्वरूप में है, सहजता में है, ध्यान देना। भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं, क्षति भी बैठी हैं, क्षति भी बैठी हैं, वही कथा शिव ने सुनी और वही कथा शंकर ने सुनी। शंकर कथा सुनकर के अमर हो गए और क्षति जी भस्म हो गई। कथा तो एक ही है, कथाएं दो नहीं है, वही कथाकार है, वही पोथी है, वही स्थल है, लेकिन फल में अंतर आ गया, एक अमर हो गए दूसरी भस्म हो गए। तो ये किसकी बात है, निष्ठा की बात है, आस्था की बात है। जब कथा हो रही है तब सती सुन रही नहीं रही है, और आगे जब बढ़ती है और वही कथा सामने जब होने लगी, अब सामने भी तो कथा आ रही जो वहां हो रही थी, यदि वहां उन्होंने सुन ली होती तो ये समस्या खड़ी न होती। उस न सुनने का परिणाम निकला कि उनको भस्म होने पड़ा। तात्पर्य केवल इतना ही निकला है, भाव केवल इतना ही निकला है कि हमारे अंदर जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी बड़ी निष्ठा होगी, जितनी बड़ी आस्था होगी, उतना बड़ा आनंद, उतनी बड़ी मस्ती, उतना बड़ा सुख हम आनंद इस कथा से ले सकते हैं। तो आज जिज्ञासा का दिन है, उत्कट जिज्ञासा बनाओ। राम की जिज्ञासा योग वशिष्ठ, कृष्ण की जिज्ञासा भगवत गीता, कार्पण्य दोषो उपहतः स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इस श्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन भूल गया, पदेन देखा जाए, रिश्ते में देखा जाए तो रिश्ते में अर्जुन का पद ऊंचा है, क्योंकि बहनोई है और वो साले हैं, वैसे भी सारथी है। इस दुनिया की दृष्टि से देखा जाए अर्जुन सभी इन चीजों को भूल करके शिष्यस्ते हम शिष्य बन गया। प्रपन्नम शरणम, मैं आपकी शरण में हूं, शिष्यस्ते हम मैं आपका शिष्य हूं, तो शिष्य बन गया, शरण में चला गया, शरणापन्न हो गया। स्पष्ट बोल दिया, स्पष्ट कह दिया। जब कोई मन में प्रश्न कहीं पर हो, कहीं पर प्रश्न हो, कहीं पर संदेह हो, तो उसको छुपाना नहीं है। भागवत संदेहों का निराकरण है, भगवत गीता संशयों का निवारण है, रामायण संदेहों का निवारण है। हमको संदेहों को स्पष्ट करना चाहिए, उन शंकाओं का समाधान करना चाहिए, फंसना नहीं, उलझना नहीं, बल्कि शास्त्र हमको उलझे से सुलझाते हैं, हमको समाधान देते हैं। तो जितने भी शास्त्र हैं वो समाधान हैं। परीक्षित का समाधान श्रीमद् भागवत है, अर्जुन का समाधान भगवत गीता है, जनक का समाधान अष्टावक्र गीता है। तो ये सब सत्साहित्य हमारा समाधान है, तो हम उन समाधानों को इस प्रकार से, इस भागवत के माध्यम से कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो बहुत बड़ा भागवत समाधान है। और हम समझते हैं कि 7 दिन के अंदर हमें भी बहुत से समाधान मिलेंगे, और समाधान ही उस तत्व की प्राप्ति है, समाधान ही उस परम तत्व की प्राप्ति है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति है, जिसको परीक्षित ने पाया, परीक्षित ने भागवत के माध्यम से पाया, अंत में परीक्षित ने, अर्जुन ने अंत में कह दिया नष्टो मोह स्मृतो लब्ध्वा, हमारा मोह नष्ट हो गया और उस ज्ञान को मैं प्राप्त कर लिया हूं। इसी प्रकार से लास्ट में परीक्षित ने भी यही बात कही कि गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्ष बंधनम, मेरे में बंधन नहीं है और मैं तो मोक्ष स्वरूप मुक्त स्वरूप हूं। तो अंत में यही बात परीक्षित ने भी कह दी। कहने का तात्पर्य ये भगवत गीता भी समाधान है, भागवत भी समाधान है, रामायण भी समाधान है, तो हमारे समस्त समाधानों का एक बहुत विशद स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है। तो इस प्रकार से महाराज श्री ने थोड़ा टच किया था सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमः सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद स्वरूप जो तत्व सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति में स्थिति में और लय में हेतु है, कारण है, उस परम तत्व के चाहने पर ही उत्पत्ति होती है, सृजन होता है। बृहदारण्यक में कहा है तदेव सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, परमात्मा उसकी पहली रचना करता है, अनंतर अनुप्राविशत फिर उसमें वो रचना करके प्रवेश कर जाता है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, त्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो तीन ताप हैं इन त्रय तापों का विनाश होता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे उस परम तत्व भगवान श्री कृष्ण के पावन पुनीत पादारविंद में हमारा सत्सत वंदन है, नमन है। 10:30 हो रहा है, मैं समझूंगा कि अब यहीं पर वाणी को विराम दे देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो
की तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो राधा कश्याम हे राम हे राम हे राम हे राम। जय अंतर्यामी तू सबका स्वामी, तू अंतर्यामी तू सबका स्वामी, तेरे चरणों में चरो धाम हे राम हे राम।